الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس گھنٹے میں، اس درس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں معارف القرآن کی جلد نمبر 3 سے، اور اس میں پیج نمبر 341 میں جو ابھی آیات تلاوت کی گئیں 56, 57, 58، تو ان کا ہم نے ترجمہ پچھلے درس میں پڑھ لیا تھا، اور خلاصہ تفسیر جو ہے وہ نہیں پڑھی تھی اس والی کلاس کے اندر، لیکن جمعے کے درس کے اندر اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن اس میں پھر دوبارہ سے ہم اس کے خلاصہ تفسیر کو پڑھیں گے. تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہیں، اگین جیسے کہ پیچھے مخاطب تھے، اور پیچھے بھی کئی باتیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائیں کہ آپ ایسے کریے، آپ ایسے کہیے، آپ ایسے نہ کیجئے. تو پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ قل، آپ ایسے کہیے، آپ یہ کہیے، انی نہیتو، آپ ان معاندین سے، یہ خلاصہ تفسیر پڑھ رہے ہیں 341 صفحے کے اوپر، کہ آپ ان معاندین سے کہیے، ان لوگوں سے جو کہ آپ سے عناد رکھتے ہیں، آپ سے دشمنی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے ایک بھائی کی نشانی کے طور پر سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تھے، ان کا انتقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، اور حضرت عبد المطلب جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے، وہ قریش کے اندر بہت ہی زیادہ چاہے جانے والے انسان تھے، بہت ہی زیادہ یعنی آئیڈیل قسم کی وہ پرسنالٹی تھی قریش کے اندر. قریش تو کیا، ایون جو ابرہا آیا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، تو وہ ابرہا بھی حضرت عبد المطلب کی پرسنالٹی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ حضرات دنیا سے چلے گئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی نشانی سمجھا جاتا تھا. تو اور ان کی اپنی شخصیت ایسی تھی، اتنے ماشاءاللہ، کیا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں تو امت نے بیان کری ہیں. ویسے بھی ابھی چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، تو اور بھی کچھ تو جلوس بھی نکالتے ہیں، اور جو جلوس نہیں بھی نکالتے وہ بھی جلسے کر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں اور خوبصورتیاں بیان فرماتے ہیں، تو اس کا تو کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو قریش ان سے محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو یہاں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں فرما رہے ہیں، ان معاندین سے کہہ دیجئے، یعنی جو عناد رکھتے ہیں آپ سے، ان سے کیوں ایسے کیوں لکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے دشمن ہیں. تو دشمنی کی وجہ صرف اور صرف ایک تھی، وہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کنفرنٹ کر دیا تھا. کنفرنٹ کرنے کا مطلب پتہ ہے نا، کہ ان کی مرضی کے خلاف بات کر دی تھی، ان کی مرضی کے خلاف. اپنے کام سے کام رکھتے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے کام سے کام رکھتے، اپنا جو ہے وہ خوبصورت زندگی گزارتے رہتے، اپنے جو ہے وہ بکریاں چراتے رہتے، تجارت کرتے رہتے. ٹھیک ہے، اور अल्लाह ताला की इबादत करते रहते, गार हिरा में जाके करते या काबतुल्ला के सामने बैठ करके करते, कोई मसला नहीं था, किसी को कोई मसला नहीं था, सब प्यार करते थे नबी अलैहिस्सलाम से, ठीक है ना। अखलाकी इतने अच्छे थे, इतने स्वीट, राइट, इतने स्वीट थे, इतने जो है वो मदद करने वाले थे, इतने जो है वो बोझ उठाने वाले थे, एवरीवन लव्ड नबी अलैहिस्सलाम। लेकिन फिर क्या हो गया, दुश्मनी कहाँ से आ गई, कन्फ्रंटेशन की वजह से आ गई, ठीक है। किस चीज को कन्फ्रंट किया नबी अलैहिस्सलाम ने इन लोगों की, कि जिसकी वजह से ये ऐसी दुश्मनी में मुब्तला हो गए, तो आप जाहिर है इसका जवाब ये देंगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनके बुतों को कन्फ्रंट किया, ठीक है, इनके बुतों को कहा कि नहीं, ये बुत जो है ना, इनकी तुम इबादत ना करो, बल्कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, ठीक है ना। ये बात तो हम सबको पता है, और जाहिर है कि इसका जवाब आपने भी यही देना है। लेकिन अगर किसी ने जरा पे अटेंशन करी होगी, पिछले कुछ जो बातें चल रही हैं, जो आप लोगों के साथ भी शेयर हुई हैं, तो अगर उसको किसी ने तवज्जो से पढ़ा होगा या सुना होगा, तो वो इसका कोई और भी जवाब दे सकती होंगी, ठीक है, कि नबी अलैहिस्सलाम की ये दुश्मनी कैसे शुरू हुई, ठीक है। तो वो शुरू कैसे हुई, माशाल्लाह पे अटेंशन करने वाले लोग दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, तो उन्होंने सब सही जवाब दिया, झूठे खुदा को कन्फ्रंट किया। नबी अलैहिस्सलाम ने इनके अंदर, हर इंसान के अंदर जो एक झूठा खुदा होता है ना, उसको नबी अलैहिस्सलाम ने कन्फ्रंट किया, उसी को नफ्स कहते हैं, उसी को नफ्स कहते हैं, ठीक है। इनका नफ्स नहीं चाहता था कि वो अल्लाह की इबादत करें, बल्कि इनका नफ्स चाहता था कि इसकी अपनी मर्जी पूरी हो, अपनी मर्जी से वो जिसकी इबादत करना चाहे करें, नो वन एल्स शुड हैव एनी थिंग टू डू विद इट, नो वन एल्स शुड बी टेलिंग देम व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। तो जब झूठा खुदा कन्फ्रंट होता है ना, जो कि हमारे अपने अंदर, हम सब के अंदर मौजूद है, जिसको नफ्स कहते हैं, तब जो है ना आग लगती है, तब क्या होता है, आग लगती है, ठीक है ना। और फिर जो है ना, वो दोस्तियां और मुहब्बतें और उल्फतें ये दुश्मनियों में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। झूठे खुदा को कन्फ्रंट किया, नफ्स को कन्फ्रंट किया, नफ्स की कन्फ्रंटेशन की, ठीक है, यानी मैं, सही है, यहां पे सारा का सारा मसला खड़ा हो गया। और फिर खानदान वाले, दूर दराज के रोमन्स एंड पर्शियंस नहीं, रोमन्स एंड पर्शियंस नहीं, बल्कि अपने खानदान वाले जो है वो मुखालिफ हो गए। तो क्या है, वो अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, मैं जो जहर था ना, उसको मैं मिठास नहीं कह सका, मीठी चीज नहीं कह सका। तो बस जब मैंने ये सच बोल दिया कि जहर तो जहर है, ठीक है, तो फिर अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, बेगाने भी नाखुश हैं, अपने भी खफा हैं, ठीक है। आप उनकी जरा ख्वाहिश तो पूरी करके देखें, फिर देखें वो आपसे कितने खुश होते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम को क्या फरमा रहे हैं, उर्दू जुबान में इसको खुलासे तफसीर में बयान किया, कि आप इन मुआनदीन से कह दीजिए कि मुझको हक तआला की तरफ से इसकी ममानियत की गई है कि इन माबूदों की इबादत करूं, जिनकी तुम लोग अल्लाह की तौहीद को छोड़कर इबादत करते हो, और उनके तरीके की गुमराही जाहिर करने के लिए आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे बातिल ख्यालात की इत्तबा ना करूंगा, ठीक है। क्या मतलब, कि तुम जो अल्लाह ताला की इबादत को छोड़ करके, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, और तुम इस बात को जानते हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, ठीक है, यानी यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ ये बात, लेकिन बाकी दीगर जगहों से हमें मालूम है कि इन लोगों को मालूम था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी की इबादत नहीं करते थे सिवाय अल्लाह की, ठीक है। तो तुम ये नए नए खुदा तुमने कहाँ से बना लिए, तो ये जो तुम करते हो ना, ये इन इन झूठ ये जो बुत हैं, इन बुतों की अजमत की वजह से तुम ये नहीं करते हो कि बुत जो है वो बहुत बड़े हैं, और तुम समझते हो कि बुत जो है वो तुम्हें रिस्क देते हैं, बुत जो है वो तुम्हारे ऊपर बारिश बरसाते हैं। नहीं, तुम इस वजह से नहीं इन बुतों की परस्तिश करते हो, बल्कि तुम किस वजह से इन बुतों की परस्तिश करते हो। दूसरे जुमले में इसको एक्सप्लिसिटली बयान कर दिया, वाजह कर दिया दूसरे जुमले में, यानी कुल ला अत्तबिउ अहवाकुम, कि ये जो तुम बुतों की परस्तिश करते हो ना, ये बुतों की खसूसियत की वजह से नहीं उनकी परस्तिश करते हो, बल्कि तुम अपने नफ्स की चाहत की वजह से इन बुतों की परस्तिश करते हो, अपने नफ्स की चाहत की वजह से। ठीक है, तो मुझे मना कर दिया गया कि मैं तुम्हारे नफ्स की इत्तबा ना करूं, मैं तुम्हारे नफ्स की इत्तबा ना करूं, बल्कि मैं तुम्हारे नफ्स को कन्फ्रंट करूं। ठीक है, मैं तुम्हारे नफ्स को कन्फ्रंट करूं कि वो जो छूट का काम कर रहा है, छूटे खुदा की जो है वो, यानी अपनी ही जो है वो परस्तिश कर रहा है, अपनी इबादत कर रहा है। किसकी इबादत कर रहा है? पत्थर के बुत, लकड़ी के बुत की इबादत नहीं कर रहा, बल्कि अपनी इबादत कर रहा है। किसकी इबादत कर रहा है? अपनी इबादत कर रहा है। ठीक है, नफ्स जो होता है ना, वो अपनी इबादत करता है असल में। तो तुम, यानी आप इनसे कह दीजिए ला अत्तबिउ अहवाकुम, कि मैं तुम्हारे नफ्स की इत्तबा, तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिशात की इत्तबा नहीं कर सकता, कि मैं भी अपने नफ्स की इत्तबा शुरू कर, मैं भी अपने नफ्स की इबादत करना शुरू कर दूं, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, या ये कि मैं भी तुम्हारे नफ्स को छोड़ दूं, जो चाहो तुम करो, बल्कि नहीं, मुझे तो हुक्म है कि मैं तुम्हें मना करूं, मैं तुम्हें कन्फ्रंट करूं। ठीक है, अन आबुद अल्लज़ीना तदउन मिन दुनिल्लाह, कि मैं तुम्हारे इन ख्वाहिशात को पूरा ना करूं। ठीक है, यानी ये नहीं कि मैं इन बुतों की इबादत ना करूं, बल्कि मैं तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी ना करूं। ठीक है, यानी तुम्हारा नफ्स क्या है? देखें एक बात प्लीज, यहाँ पे अगर आप लिख लें, मेरे भी ध्यान में अभी अभी आई। ठीक है, कि बल्कि आई भी थी, निकल भी गई, सुबह तो क्या थी कि, हाँ नबी अलैहिस्सलाम को ये लोग पकड़ पकड़ करके बुत की इबादत करने के लिए तो नहीं लाते थे। ठीक है, जो यहाँ पे फरमाया ना कि मुझे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत ना करूं, कि जिनकी तुम अल्लाह को छोड़ के इबादत करते हो, तो क्या ये लोग नबी अलैहिस्सलाम को पकड़ पकड़ के खींच खींच करके घर से निकाल के लाते थे कि आए आप आकर के जो है वो काबतुल्ला के अंदर जो बुत रखे हुए हैं आप उनके सामने सजदा करें? कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती, कोई सीरत की किताब में कहीं ऐसी चीज नहीं मिलती कि ये लोग नबी अलैहिस्सलाम को घर से घसीट के लाते थे कि आप ही इस बुत की इबादत करें। ठीक है, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ये बात अल्लाह ताला आपसे सलम को ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं कि जिनकी तुम अल्लाह को छोड़ के इबादत करते हो? ठीक है, बात समझ में आए, सवाल समझ में आए? वही बात है जो बहुत पहले भी हो चुकी है, कई दफा हो चुकी है, बल्कि बच्चों की सीरत क्लास में भी हो चुकी है और बयान में भी हो चुकी है, कि इन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा से निकल जाने के लिए कभी भी नहीं कहा था कि आप यहां से निकल जाइए, कभी भी नहीं कहा था नबी अलैहिस्सलाम को कि आप मक्का मुकरमा छोड़ के चले जाइए, ये कभी भी नहीं कहा था। ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फिर भी छोड़ के क्यों चले गए भाई? इतना मोहब्बत करते थे वतन से, मोहब्बत, आजकल 14 अगस्त 15 अगस्त गुजरा है ना, तो वतन से मोहब्बत के ऊपर बड़ी बातें हुई हैं उसके अंदर, और उसके अंदर ये बात भी कही गई नबी अलैहिस्सलाम को वतन से मोहब्बत थी। ठीक है, और जब वतन से निकल रहे थे तो फरमा रहे थे कि अगर ये लोग मुझे यहां से ना निकालते तो मैं कभी भी ना तुम्हें छोड़ के जाता, यानी नबी अलैहिस्सलाम वतन से इतनी मोहब्बत। इन्होंने तो कभी कहा ही नहीं था नबी अलैहिस्सलाम को कि आप छोड़ के चले जाएं यहाँ से। ठीक है, तो वो क्यों कहा, क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया था, वो फिर वो भी एक अलग डिस्कशन है, लेकिन बात वहां पर भी यही है कि इन लोगों ने तो कभी कहा ही नहीं था ये काम करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम को कि वतन छोड़ के चले जाएं। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी यही बात है कि इन्नी नुही तो अनबद, इन्होंने तो कभी कहा ही नबी अलैहिस्सलाम को क्या आप आकर के हमारे बुतों की परस्तिश कीजिए, तो फिर ये क्यों हो रहा है कि इन्नी नुही तो अनबद अल्लज़ीना, यानी खामखा में बैठ करके नबी अलैहिस्सलाम, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इस किस्म के हमारे हालात भी ऐसे ही होते। तो भाई यहां पर इसका मतलब क्या है कि इनकी क्या ख्वाहिश थी, अहवाकुम, इनकी ख्वाहिश क्या थी, जरा सा बस अगर आप इसका जवाब दे देना तो फिर हम आगे चलते हैं। इनकी क्या ख्वाहिश थी कि नबी अलैहिस्सलाम आके इनकी बुतों की परस्तिश करें, क्या ये इनकी ख्वाहिश थी? क्या इनकी ये ख्वाहिश थी कि नबी अलैहिस्सलाम इनके साथ जो है वो इनके जो मेले होते थे, ठेले होते थे, उसके अंदर शामिल हो? क्या इनकी ये ख्वाहिश थी, ये जो फरमाया ला अत्तबियु अहवाकुम, क्या इनकी ये ख्वाहिश थी कि नबी अलैहिस्सलाम इनके साथ मेले ठेलों के अंदर, म्यूजिक एंड डांसिंग के अंदर शामिल हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम को क्या ये लोग खींच खींच करके जो है वो अपने फेस्टिवल्स में लेके आते रहते थे? क्या ख्वाहिश थी इनकी, जरा बता दें। हाँ माशाल्लाह, ठीक है, उनकी तरबियत ना करें नबी अलैहिस्सलाम, उनकी इस्लाह, तरबियत का लफ्ज यहाँ पे मुनासिब नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम उनकी इस्लाह ना करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप सबको भी नजर आ रहा है कि ये के उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने नफ्स की पैरवी करें, ताकि वो लोग अपने नफ्स की पैरवी करते रहे, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, ठीक है, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। दिस इज व्हाट दे वांटेड, वो ये काम चाहते थे। कभी भी उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को पकड़ पकड़ के जो है ना वो अपने मेले ठेलों के अंदर शामिल नहीं करवाया, कभी भी उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को पकड़ पकड़ के बुतों के सामने सजदा करने पे मजबूर नहीं किया, ठीक है। ठीक है, उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बुतों को बुरा ना कहें और एक अल्लाह की इबादत की तबलीग ना करें। आप अभी वही बात है, फिर वो आपको पहले भी डांट पड़ी थी, बहरहाल, ठीक है। तो बिल्कुल सही, पिछले जो दो जवाब हैं, बल्कि तीन जवाब हैं, वो बिल्कुल सही जवाब हैं। दो डायरेक्ट मैसेज में आए हैं, इस वजह से बाकी लोग उनको पढ़ नहीं सकते, तो शायद उसने पढ़ के आपको सुना दिया कि वो चाहते थे कि नबी अलैहिस्सलाम उनकी इस्लाह ना करें, और वो चाहते थे कि मैं जो कर रहा हूँ, कि वो जो कर रहे हैं उसको गलत ना कहें। ये नबी अलैहिस्सलाम से वो चाहते थे कि तुम अपने काम से काम रखो, हमें अपने हाल पे छोड़ दो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, तुम बेशक जो चाहते हो करो, ठीक है ना, तुम नहीं करना चाहते हमारे बुतों की इबादत ना करो, तुम गारे हिरा में जाकर के जो है वो पता नहीं किस अपने खुदा की इबादत करना चाहते हो, तुम करते रहो उसकी इबादत, ठीक है। तो बात क्या समझ में आई, ये सारी डिस्कशन इतनी देर से हम कर क्यों रहे हैं? वो इसी वजह से कर रहे हैं ताकि हमें कुछ बात समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, और हम क्या गलत कर रहे हैं। कि हमारा भी सारा का सारा मसला यही है कि हम भी जो है ना वो बहुत अच्छा समझते हैं किसी को, बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने खानदान वाले किसी शख्स से या अपने किसी और दोस्त से, जब तक कि वो हमें कन्फ्रंट नहीं करता हमारी गलत बातों के ऊपर, बल्कि हमें अपने हाल पे छोड़ देता है, या जो हम कर रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसकी तारीफ करता रहता है, राइट, जब तक वो हमारे मर्जी की तारीफ करता रहता है, हमें जो है वो चढ़ाता रहता है, हमें प्रेज करता रहता है, हम बड़े मोहब्बत करते हैं उनसे, बड़े उनको चाहते हैं, बड़े उनकी वाह वाह करते हैं, और अगर वो कोई अच्छे अच्छे और भी काम कर लें हमारी मर्जी के हिसाब से, तो हम उनकी इत्तबा भी, हम उनके जो है वो यानी नारे भी मारना शुरू कर देते हैं उनके हक में, ठीक है। लेकिन जब वो हमारी इस्लाह पर आते हैं ना, फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जब वो हमारी इस्लाह की कोई बात कर देना, फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इस्लाह की बात का मतलब क्या होता है कि जिसको कि हम इस्लाह ना समझते हो, वो ऐसी कोई बात कर दे, फिर हमसे बर्दाश्त, ठीक है। तो हमारी जो, अगर हमारा यही हाल है कि इस्लाह हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो हम किसकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं? हम मुशरिकीन मक्का की सुन्नत पर अमल कर, हमारी भी वही कैफियत है जो कि मुशरिकीन मक्का की कैफियत थी, ठीक है। तो ये किताब पढ़ना जो है ना, ये किताब पढ़ना जो है वो मसला नहीं है, वो तो आप अपनी मर्जी से आई हुई है ना यहाँ पे, किसी ने आपको खींच करके इस क्लास के अंदर शामिल नहीं किया ना, ठीक है। कोई आपके घर में पहुंच करके जो है वो आपको डंडे मार मार करके क्लास में लॉग इन नहीं करवा रहा था, आप अपनी मर्जी से आई है ना, ठीक है। तो यहां तक तो बात बहुत आसान है, क्योंकि अपनी मर्जी से क्लास ज्वाइन करी है ना। लेकिन जहां पर आपकी कोई गलती सामने आएगी, और फिर अगर ये आजिज या कोई और आपके घर का फर्द वो आपको कह दे कि नहीं आप ये काम गलत कर रही हैं, और फिर दलील से उसको प्रूव भी कर दे, दलील से उसको प्रूव भी कर दे, तो फिर देखा जाएगा कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है ना, फिर आप उसकी दुश्मन हो जाती हैं या उसकी एहसान मंद होती हैं, दलील से प्रूव भी कर दे। ठीक है, क्योंकि कहने को तो कोई भी आप उठ करके उल्टी सीधी कोई भी बात कहना शुरू कर दे, तो ये कोई थोड़ी सा मतलब है कि जो आपको जो कुछ कहना शुरू कर दे तो आप उसकी बात मानना शुरू कर दें, ये तो मकसद नहीं है कि कोई भी कुछ भी कह दे बस आप दूसरे की बात मान लें तो आपके नफ्स का तस्किया हो जाएगा, नहीं। बल्कि जो दलील से बात कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि हाँ भाई आपका ये अमल गलत है और जो मैं आपको बता रहा हूं ये ही सही है, इट्स प्रूवन कि ये सही है, फिर आप उसकी दुश्मन बनती हैं या आप उसकी दोस्त ही रहती हैं, इस वक्त पता चलेगा, उस वक्त पता चलेगा। ठीक है, अच्छा आप औरदीन से कह दीजिए, तो आप उनको कह दीजिए कि मैं तुम्हारे बातिल ख्यालात का इत्तबा नहीं करूंगा, यानी आई कैन नॉट लीव यू ऑन योर ओन। ठीक है, मैं तुम्हारे बातिल ख्यालात की इत्तबा नहीं करूंगा, कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, इसकी तशरीह लिख लीजिए कि मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें तुम्हारे, मैं भी लिख लेता हूँ क्योंकि हमारे भी ध्यान में आपकी क्लास के दौरान ये बात आई, मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बात तो पहले भी थी, लेकिन इस जुमले की तशरीह के तौर पे ये बात जो है वो अभी ध्यान में आई है, तो हमने भी लिख लिया अपने पास। ठीक है, क्योंकि अगर नाउज़ बिल्ला मैं ऐसा करूंगा तो इस हालत में बेराह हो जाऊं, मैं गुमराह हो जाऊं, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया तो मैं गुमराह हो जाऊं। जी यानी मैं तो तू कोई गलत नहीं कहा, मैं तो नहीं बुतों की परस्तिश कर रहा, मैं तो नहीं नाच गाने के अंदर शामिल हो रहा। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम तो पहले भी नाच गाने में शामिल नहीं होते थे, नबी अलैहिस्सलाम तो पहले भी जो है वो लोगों को अजियत नहीं पहुंचाते थे, नबी अलैहिस्सलाम तो पहले भी बुतों की परस्तिश नहीं करते थे। ठीक है, तो आप सरसम तो हमारे डेफिनेशन ऑफ हिदायत, हमारी डेफिनेशन ऑफ हिदायत के मुताबिक तो नबी अलैहिस्सलाम हिदायत पर थे। ठीक है, लेकिन यहां पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि आप इनसे कह दीजिए कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। बात समझ में आई, इसको भी लिखने तो इंशाल्लाह फायदा होगा। ठीक, मैं अपने हाल में तो मैं शिर्क नहीं कर रहा, मैं जुल्म नहीं करता, मैं नाच गाना और ख्वाहिश परस्ती नहीं करता, लेकिन मसला ये नहीं है कि बस मैं अपने हाल में खुश रहूं तो मैं गुमराह नहीं हूंगा, बल्कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया जाए, अगर मैंने तुम्हारी ख्वाहिश मान ली तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। तद वलल तु इदन वमा अना मिनल मुहतदीन, मैं गुमराह हो जाऊंगा। ठीक है, अच्छा आप उनसे ये भी कह दीजिए कि मेरे पास तो इस दीन इस्लाम के हक होने पर एक दलील काफी है जो मौजूद है, काफी दलील मेरे पास मौजूद है, काफी शाफी सफिशियंट, यहाँ पे काफी का तर्जुमा अंग्रेजी में, हमारी जुबान तो अब इंग्लू हो चुकी है, अंग्रेजी प्लस उर्दू तो इंग्लिश प्लस उर्दू, तो काफी का तर्जुमा यहाँ पर जो हमें भी समझ में आए वो क्या होगा, सफिशियंट। ठीक है, मेरे पास सफिशियंट दलील मौजूद है, और ये नहीं कि मैं दलील को छुपा के कहीं बैठा हुआ हूं, बल्कि मैंने वो दलील जो है वो तुम्हारे सामने बयान भी कर दी है। ठीक है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी क्या है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, तो मैंने बलागुल मुबीन कर दिया है। ठीक है, वो बयाना जो मेरे पास थी वो मैंने तुम तक भी पहुंचा दी है, तुम्हारे सामने भी खोल दी है, तो वो मेरे रब की तरफ से मुझको मिली थी, यानी कुरान मजीद, जो कि मेरा मुआजा है। ठीक है, तो कुरान मजीद के अंदर जो बातें हैं वो बैयना है, वो दलील है जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने आगे उन तक पहुंचा दी थी, जिससे मेरी तस्दीक होती है। ठीक है, जो कि प्रूफ करती है कि मैं सही बात कर रहा हूं, और तुम भी इसका इनकार नहीं कर सकते कि मैं सही बात कर रहा हूं, ये दलील तुम्हारे सामने खुल चुकी है। लेकिन तुम बिला वजह उसकी तकजीब कर, ठीक है, वो कज़्ज़ब तुम भी, जबकि हाल ये है कि तुम झुटला रहे हो उसको। बिल्कुल खुली ढुल्ली दलील तुम्हारे सामने मैंने रख दी है, और तुम्हारा हाल ये है कि तुम उसको झुटला रहे हो। ठीक है, कज़्ज़ब तुम भी, तुम उसको झुटला रहे हो। मा इंदी मा तस्तअजिलून बिही, ठीक है, आगे कहते हैं कि और तुम जो ये कहते हो कि अगर दीन इस्लाम हक है तो हमारे इनकार पर आसमान से पत्थर बरसें या कोई और अजाब आए, जैसा कि दूसरी जगह इन अल्फाज से मजकूर है, इनका नहादा हुवल हक मिन इंदिक, कि अगर वो चीज जो तुम्हारे पास है हक है, फअम्तिर अलैना हिजारत मिन अस्समा, तो हमारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसा दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि आप हमारे ऊपर पत्थर बरसा दीजिए आसमान से, अब इतना बे अजाबिन अलीम, औ इतना बे अजाबिन अलीम, या हमारे ऊपर कोई दर्दनाक अजाब ले आइए। ठीक है, पत्थर नहीं बरसाए तो कोई और बरसा दें, बारिश इतनी ज्यादा बरसा दें कि सैलाब आकर के हमारे सब कुछ खत्म हो जाए, आप बारिश बरसा दीजिए ऐसी, आप जो है वो जमीन के टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला दीजिए। जमीन के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो जब आपस में टकराती हैं तो जलजला आ जाता है उनके ऊपर, आप ये काम कर दीजिए। अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब, क्योंकि जब जलजला आता है तो फिर पत्थर गिरते हैं, इंसान उनके नीचे पिस जाते हैं, ठीक है, या जमीन फटती है, इंसान उनके नीचे अंदर जाकर के दफन हो जाते हैं, ये दर्दनाक अजाब होता है। ठीक है, या आजकल जो सैलाब आया हमारे ऊपर के इलाकों में, ठीक है, तो वो जो पहले सैलाब आए थे ना अगस्त के शुरू में, तो वो ऐसे सैलाब थे जो कि पानी के सैलाब नहीं थे। अभी पंजाब और सिंध में जो आ रहा है ना, ये तो पानी का सैलाब है ना, प्योर पानी। वो जो सैलाब आए थे बुनियर में और केपी के दूसरे बहुत से इलाकों में, सवात वगैरह में, वो इतनी बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टाने आई थी जो कि पानी के आगे आगे चल रही थी, पानी पीछे पीछे चल रहा था। ठीक है, और उन पत्थरों ने आकर के जो है ना वो घरों को बिल्कुल यानी पीस के रख लिया, पीस के रख दिया, और घरों के अंदर जो इंसान थे वो उनके अंदर ही पिस गए। ठीक है, तो अल्लाह ताला का अजाब ऐसा होता है। ठीक है, तो फरमाते हैं कि अब इतना भी अजाब अलीम, कि ये लोग आपसे ये कहते हैं कि आप अजाब अलीम लेकर के आ जाइए, तो ये ऐसी बातें करते थे, जल्दी लेकर आओ ना, चलो तुम कह रहे हो हमें जो डरा रहे हो कि अजाब आएगा, तो तुम लेकर के आ जाओ अजाब। तो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम हमसे कह रहे हैं कि आप इनसे कह दीजिए कि मा इंदी तस्ताजिन, कि जिस चीज का तुम तकाजा कर रहे हो वो यानी अजाब अलीम, वो मेरे पास यानी मेरी कुदरत में नहीं, मेरी कुदरत में नहीं है, मैं नहीं बारिशें बरसा सकता, मैं नहीं बारिशें बरसा सकता, मैं अल्लाह का हबीब हूं लेकिन मैं बारिशें नहीं बरसा सकता, मैं अल्लाह का हबीब हूं लेकिन मैं जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स को नहीं हिला सकता। ठीक है, मैं पत्थरों चट्टानों को जो है वो पहाड़ों से नीचे नहीं रुड़का सकता, ये काम मेरी कुदरत में नहीं है। इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म किसी का नहीं चलता बजुज अल्लाह के, यानी बारिश के ऊपर हुक्म मेरा नहीं चलता, बारिश के ऊपर हुक्म अल्लाह का चलता है, जमीन के ऊपर हुक्म मेरा नहीं चलता, जमीन पर हुक्म अल्लाह का चलता है। ठीक है, और किसी भी चीज के ऊपर मेरा हुक्म नहीं चलता, अल्लाह का हुक्म चलता है। ठीक है, इन अल हुक्म इल्ला लिल्लाह, और अल्लाह का हुक्म नुजूल अजाब का हुआ नहीं तो मैं कैसे अजाब दिखला दूं, मैं कैसे अजाब लेकर के आ जाऊं, जब अल्लाह का हुक्म हुआ ही नहीं तो मैं कैसे अजाब लेकर के आ जाऊं। ठीक है, तो ये हकीकत इनके सामने खोल के बयान कर दीजिए कि मेरा काम जो है ना ये अजाब लाना नहीं है, और फिर क्या ख्याल है कि मेरा काम अदाब लाना तो नहीं है, लेकिन मेरा काम सवाब लाना है? अदाब लाना मेरा काम नहीं है, लेकिन अदाब का ऑपोजिट क्या बनता है? सवाब बनता है ना, तीन नुक्तों वाले सा के साथ, सवाब। ठीक है, यानी जन्नत की करेंसी, या जो है जन्नत की नेमतों के लिए जो माल पैसा इस्तेमाल होगा उसको सवाब कहते हैं। तो क्या मेरा काम सवाब लाना है, अदाब लाना नहीं है? नहीं, बल्कि मेरे बस में सवाब भी नहीं है, मेरे बस में अजाब भी नहीं है, मेरे बस में सवाब भी नहीं है। ये भी अल्लाह ही ने आपको देना है, अजाब भी अल्लाह ही ने लाना है और सवाब भी अल्लाह ही ने देना है। मेरा काम क्या है? मेरा काम तो बात को पहुंचा देना है, बैयना, बैयना को तुम तक पहुंचा देना है, ये मेरा काम। ठीक है, और वो भी काम मेरा अपनी मर्जी से नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से ये काम करना शुरू कर दिया है, बल्कि मुझे ऊपर से हुक्म मिला है इस काम करने का। ठीक है, तो वो काम करना, ये मेरा काम, ये मेरे बस में है क्योंकि मुझे इसका हुक्म मिला है। जिसका हुक्म मिल जाता है ना, तो फिर वो बस में हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला फिर उसको बस में कर देता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हक बात को दलील से बतला देता है, यकुसुल हक्का वहुवा खैरुल फासिरीन। दलील से अल्लाह ताला हक बात को बतला देता है, यकुसुल हक्का, यानी दलील से जो है वो तफसीरन बयान फरमाया ना, यानी ये नहीं कि बस ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, बस मानो, मेरी मानो, ये ऐसे है, बल्कि दलील से प्रूव भी करते हैं इस बात। ठीक है, अब वो दलील कैसी होती है? वो दलील जो है वो लॉजिकल दलील होती है, अकली दलील होती है। ठीक है, ये नहीं कि जन्नत को मानो, ठीक है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत को मानो। अब दलील क्या है जन्नत को मानने की? क्या नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत दिखलाई? जहन्नुम को मानो, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने अबू जहल, अबू लहब, इन सबको जहन्नुम दिखलाई? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर कौन सी दलील की बात कर रहे हैं? दलील हमारे नजदीक दलील क्या है? जो मेरी आंखों को नजर आ जाए, जो मुझे नजर आ जाए ना, वो दलील होती है हमारे नजदीक। लेकिन अल्लाह ताला ने तो ऐसी कोई दलील दी ही नहीं। ठीक है, तो फिर कौन सी दलील दी भाई? ना अल्लाह ताला ने अपना अर्श दिखाया इंसानों को, ना अल्लाह ताला ने जो है वो जन्नत दिखाई, जहन्नुम दिखाई। जन्नत जहन्नुम तो चलो साथ में आसमान पर जन्नत है ना, और जहन्नुम जो है वो शायद जमीन के तह के अंदर है, पहला आसमान ही दिखला देते। ठीक है, जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम जो है वो मौजूद हैं पहले आसमान के ऊपर, चलो कुछ ना दिखलाते, पहला आसमान दिखला देते सबको। ठीक है, अल्लाह ताला ने पहला आसमान तक नहीं दिखलाया, चलो फरिश्ते दिखला देते। ठीक है, क्योंकि फरिश्ते तो पहले आसमान पर नहीं, फरिश्ते तो दुनिया के अंदर ही आ जाते हैं, तो फरिश्ते दिखला देते। अल्लाह ताला ने फरिश्ते भी नहीं दिखलाए, पर कौन सी दलील भाई? तो दिखलाने सिखलाने की चीजें जो होती है ना, ये दलील नहीं होती, बल्कि दलील क्या होती है? जो कि इंसान के अकली जो इख्तलाफात है ना, उनको क्लियर कर दे। ठीक है, तो वो दलील जो थी वो कुरान मजीद के अल्फाज, वो कुरान मजीद का असलूब था। ठीक है, वो दलील जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की सच्चाई थी। दलील क्या थी? नबी अलैहिस्सलाम की सच्चाई थी। ठीक है, बल्कि ये जो बैयना का लफ्ज है ना, ये बैयना लफ्ज, इसकी तफसीर अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में करते हैं। ये बैयना क्या चीज है? सूरह बैयना 30वें पारे के अंदर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, लम यकुनिल लजीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना मुनफकीना हत्ता तातियहुमुल बैयना। ये जो मुशरिकीन अहले किताब में से और बुत परस्तों में से ये जितने भी लोग थे ना, इन्होंने हरगिज नहीं माननी थी बात जब तक कि इनके पास बैयना ना आ जाए। ठीक है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं जब तक इनके पास बैयना ना आ जाए। फिर आगे कहते हैं कि ये बैयना क्या चीज? रसूलुम मिनल्लाही यतलू सुहुफं तहरा। बैयना को खुद खोल के बयान कर दिया कि ये क्या है बैयना, रसूलुन मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ ये रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही है बैयना। नबी अलैहिस्सलाम बैयना, नबी अलैहिस्सलाम की जात बैयना है, नबी अलैहिस्सलाम की बात बैयना है। कुरान क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से निकले हुए अल्फाज, ठीक है। हदीस क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से निकले हुए अल्फाज, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने बतला दिया ये वाले जो अल्फाज मेरी जुबान से निकल रहे हैं ये अल्लाह के अल्फाज हैं, इनको कुरान मानो, ठीक है। और ये जो अल्फाज मेरी जुबान से निकल रहे हैं ये अल्लाह के अल्फाज नहीं, ये मेरे अल्फाज हैं, इनको हदीस मानो, ठीक है। तो टुगेदर विद द वर्ड्स नबी अलैहिस्सलाम्स पर्सन इज बैयना, रसूलु मिन अल्लाही यतलू सुहफ़ मुतहरा, ये बैयना है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हक बात को दलील से बतला देता है, ये दलील क्या है? नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम की जो बातें हैं वो दलील है, ठीक है। वो बातें हम तक मौजूद है, हम तक नबी अलैहिस्सलाम की शख्सियत मौजूद नहीं है, ठीक है। शख्सियत थ्री डायमेंशन पूरी की पूरी बॉडी चलते फिरते इंसान, नबी अलैहिस्सलाम इस तरह हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, ठीक है। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के जो लाई हुई बातें हैं वो सारी की सारी हमारे पास मौजूद हैं, और फिर उन बातों से जो मजीद उसकी डिटेल्स निकलती हैं और वो रेलेवेंट बनती हैं सारे मामलात के अंदर, वो सारी की सारी दलील हमारे पास 1400 साल गुजरने के बावजूद मौजूद है। तो अल्लाह ताला हक बात को दलील से बतला देता है और सबसे अच्छा फैसला करने वाला वही है, चुनाचे उसने मेरी रिसालत की वजाहत, मेरी रिसालत की वाजह और तभी दलील कुरान करीम भेज दिया, और दूसरे वाजह मुअज्जज़ात जाहिर फरमा दिए, और दलील सही एक भी काफी होती है, तो तुम्हारी फरमाइशी दलीलें जाहिर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस वक्त नुज़ूल अज़ाब के जरिए फैसला नहीं होता। अब ये तफसीरन थानवी रहमतुल्लाह ने सारी बातें इसके अंदर शामिल करी हैं कि एक ही दलील जो थी वो काफी थी, तो अब तुम जो बार बार दलीलें मांगते रहते हो ना उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश को थोड़ी पूरी करनी है मैंने कि तुम जो मांगो मैं वो ला करके तुम्हें दे दूं, ठीक है। वो इसलिए इस वक्त नुज़ूल अज़ाब के जरिए फैसला नहीं फरमाया, बेशक तुम मांगते रहो लेकिन तुम्हारी इत्तबा को थोड़ी करनी है मैंने, ठीक है। मैंने तुम्हारी इताअत करनी है, मैंने तुम्हारी इत्तबा करनी है, नहीं मैंने तुम्हारी इताअत तुम्हारी इत्तबा नहीं करनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर मेरे पास यानी मेरी कुदरत में वो चीज होती जिसका तुम तकाजा कर रहे हो यानी अजाब, तो अब तक मेरा और तुम्हारा बाहिमी कजिया कभी का फैसल हो चुका होता, ठीक है। कभी का फैसल हो चुका होता कि कुल लो अन्न इंदी मा तस्तअजिलुन बिही लक़ुदिय अल-अम्रु बैनी वबैनक, तो अज़ाब आ चुका होता तुम्हारा, ठीक है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम के अंदर बहुत हौसला था, बहुत ज्यादा सबर थी, सबर था, बर्दाश्त थी, हौसला था। नबी अलैहिस्सलाम जो काम इस दुनिया में कर रहे थे ना, ये आसान काम नहीं है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम, ठीक है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम। क्यों ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है? हमारे हजरत जी के जो शेख हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक कौल आप कई दफा इस हादसे से भी सुन चुकी होंगी, हमने भी हजरत जी से सुना, ठीक है। हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दुनिया में इस दुनिया में इंसान का आ जाना आसान, इंसान के लफ्ज से ना फिर वो आसान को राइम करते थे, ठीक है, बकायदा काफिया जैसे बनाते थे। दुनिया में इंसान का आ जाना आसान, लेकिन सही मानों में इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम, बल्कि ये आजिज कहेगा सबसे मुश्किल काम, सही मानों में इंसान बनना यानी इस्लाह हो जाना उस इंसान की, ये सबसे मुश्किल काम। फिर आगे फरमाते थे जो बनता है यानी जो खुद अपनी इस्लाह कर रहा होता है ना, या जो बनाता है यानी दूसरों की इस्लाह जो कर रहा होता है, वो पता पाता है, उसको लग पता जाता है, ये सबसे मुश्किल काम है इस्लाह करना, अपनी इसलाह करना भी सबसे मुश्किल काम है और दूसरों की इसलाह करना भी सबसे मुश्किल काम है। तो अब इसके ऊपर फिर हम वही सवाल करते हैं, क्यों ये सबसे मुश्किल काम क्यों है? हमें तो लगता है ना कि सबसे मुश्किल काम है पत्थर तोड़ना, ठीक है, या केटू की चोटी को सर करना। केटू की चोटी, माउंट एवरेस्ट जो है, वो दोस्त बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है ना, उसको सर करना इतना मुश्किल काम नहीं है। केटू जो पाकिस्तान के अंदर है ना, कराकरम के अंदर, उसको सर करना यानी उसकी जो है वो पीक पे पहुंचना, ये सबसे मुश्किल काम है, वो आसान नहीं है केटू का। तो हम हमारे नजदीक तो सबसे मुश्किल काम केटू की चोटी पर जाना है, ठीक है, या सबसे मुश्किल काम और क्या होगा, जहाज बनाना सबसे मुश्किल काम होगा, जो इतनी बड़ी मेटल की बनी हुई चीज होती है उसको हवा में उड़ाना, ये सबसे मुश्किल काम होगा। या और सबसे मुश्किल काम जो है वो स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग बनाना, ठीक है, स्काई स्क्रेपर्स बिल्ड करना, ये सबसे मुश्किल काम होगा, ठीक है, या जो है वो जमीन के अंदर जो है वो गड़ा खोद करके जो है वो पता नहीं तेल निकालना, ये सबसे मुश्किल काम होगा, या समंदर की गहराइयों में जा करके वहां से जो है वो ऑयल माइनिंग करना, वो सबसे मुश्किल काम होगा। मुश्किल काम क्या होते हैं, यही समझते हैं ना हम लोग, ये मुश्किल काम होते हैं। लेकिन अल्लाह वाले क्या बता रहे हैं कि नहीं, इसलाह करना सबसे मुश्किल काम होता है। अब उसके ऊपर सवाल होता है कि क्यों भाई, अपनी इसलाह करना या दूसरों की इसलाह करना, ये सबसे मुश्किल काम क्यों होता है? जी, आपसे पूछा है क्यों होता है भाई सबसे मुश्किल काम? हवा, पानी, पत्थर, चार एलिमेंट्स ऑफ नेचर क्या होते हैं? हवा, पानी, आग और मिट्टी, है ना, मिट्टी, यानी मिट्टी से ही मिलकर के जो है वो रॉक्स भी बनते हैं, ठीक है, रॉक्स भी दरअसल मिट्टी ही होते हैं, बस वो एक डिफरेंट फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये चार होते हैं, यानी इन चारों की तस्खीर, इन चारों को मुसख्खर करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है, या नफ्स की इसलाह करना सबसे मुश्किल काम, ठीक है, तो वजह नहीं बताना किसी ने, इसलाह करना सबसे मुश्किल काम क्यों होता है? खालिफ कुव्वतों यानी नफ्स शैतान की वजह से, अपना दिल मारना, अपने दिल मारने की वजह से नहीं, जो क्लास के अंदर हम बातें कर रहे हैं, क्लास में पहले भी हुई, अभी भी हुई, ठीक है, नफ्स इनका ही मजमुआ होता है ना। जी ठीक है, ये सही जवाब है, बिकॉज इट इज अटैकिंग और रादर कन्फ्रंटिंग झूठा खुदा, ठीक है। ये जो इसलाह का काम है ना, ये किसके साथ, हम अब अपने जरा कराची की स्ट्रीट लैंग्वेज अगर इस्तेमाल करें, उसको कहेंगे पंगा लेना, पंगा लेना समझते हैं ना सब, ठीक है, छेड़ना, पंगा लेना, ठीक है, ये जो बिल्डिंग्स बनाना, केटू की चोटी सर करना, या समंदर के अंदर सबमरीन्स बना करके उतार देना, ठीक है, या जो है वो जो भी इस किस्म के काम करना, ये सब क्या है? ये है मखलूक से छेड़छाड़ करना, मखलूक से छेड़छाड़ करना, जो मखलूक क्या है, जो कि अपने आप को मखलूक समझती है, मिट्टी जो है ना, ये अपने आप को खुदा नहीं समझती, मखलूक समझती है, ठीक है ना, पानी ये भी मखलूक है और अपने आप को मखलूक ही समझता है, ठीक है, हवा ये भी मखलूक है, ये भी अपने आप को मखलूक समझती है, और आग बड़ी खतरनाक चीज है, जला देती है, लेकिन आग जो है ना, ये अपने आप को खालिस नहीं समझती है, हत्ता के इस आग से जो बना है ना, जिसको शैतान कहते हैं, वो शैतान जो है वो अपने आप को खालिस नहीं समझता, वो अपने आप को मखलूक ही समझता है, ठीक है। तो मखलूक से छेड़छाड़ करना ये आसान काम, जो मखलूक अपने आप को मखलूक समझे। लेकिन नफ्स जो होता है ना, नफ्स है तो ये भी मखलूक जो हमारे अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है तो ये भी मखलूक। लेकिन इसमें और दूसरी मखलूक में क्या फर्क है? ये एक यूनिक किस्म की मखलूक है, बाकी कोई मखलूक ऐसी मखलूक नहीं है जैसे कि नफ्स है। फर्क यह है कि बाकी मखलूक अपने आप को मखलूक समझती है, मानती है कि वो मखलूक है, जबकि ये अपने आप को मखलूक नहीं समझता, ये अपने आप को खुदा समझता है। अना रब्बुकुमुल आला, मैं तो रब हूं और सबसे ऊंचा रब, सबसे आला रब। ठीक है, तो ये जो है ना, ये झूठा खुदा है, झूठा खुदा। ठीक है, लेकिन ये अपने आप को खुदा समझता है, ये अपने आप को सच्चा खुदा समझता है, असली खुदा समझता है। तो अब इस्लाह की जो मेहनत है ना, ये है नाउज बिल्ला एक खुदा से टक्कर लेना, खुदा से टक्कर लेना, असली खुदा से नहीं, नकली खुदा से टक्कर लेना। ठीक है, तो भाई खुदा से जो टकराएगा वो हमारे कराची में दीवारों पे नारे भी लिखे होते हैं, वो पाश पाश हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। क्यों भाई, कैसे पाश पाश हो जाएगा? क्योंकि हम खुदा हैं। ठीक है, हम बदलते हैं रुख हवाओं के, हम बदलते हैं रुख हवाओं के, आओ हमारे साथ चलो। ये भी एक सियासी नारा होता था, दीवारों पे लिखा होता था। ठीक है, ये कौन लिखता है? ये इंसान लिखते हैं ना, ये हम बदलते हैं रुख हवाओं के। ठीक है, दूसरा जुमला किसी को याद हो तो वो लिख दें ताकि शेर मुकम्मल हो। तो ये कौन लिखता है? इंसान लिखते हैं ना, तो इंसान अपने आप को खुदा समझना शुरू हो जाते हैं तो इस किस्म की बातें शुरू कर देते, हम बदलते हैं रुख हवाओं के। अब ऐसे इंसान की इसलाह करने के लिए जो मेहनत करेगा, तो वो तो सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नबियों का जो काम होता है ना, ये नफ्स की इसलाह होती है। इनका काम जो है वो बिल्डिंग्स बनाना नहीं होता, इनका काम जो है ना पहाड़ों की चोटियां सर करना नहीं होता, इनका काम जो है वो समंदर के अंदर गोते लगाना नहीं होता। ठीक है ना, इनका काम जो है ना वो आग के जरिए से कोई फर्नेस बनाना और जो है वो मिनरल माइनिंग की कोई और इस किस्म की, ये कोई काम इन नबियों का काम नहीं होता। ये तो आसान काम है, ये तो आसान काम है, ये तो उन मखलूकों के साथ छेड़छाड़ करनी है जो कि अपने आप को मखलूक समझती भी है। नबियों का काम ये नहीं होता, नबियों का काम तो उस मखलूक के साथ छेड़छाड़ करना होता है, उस मखलूक के साथ पंगा लेना होता है जो कि अपने आप को खुदा समझती है। ये लिखने अगर अपने पास तो पता नहीं पैदा होगा, उम्मीद है कि हो जाएगा। नबी तो उस मखलूक के साथ छेड़छाड़ करते हैं कि जो मखलूक अपने आप को खुदा समझती है। बात समझ आ रही है? मेरे पास तो किताब के अंदर जगह ही बाकी नहीं है लिखने के लिए, वरना मैं भी लिख लेता। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये अल्फाज अता किए हैं आपके लिए, पहले से तुम ही सोच करके आए थे बातें। ठीक है, आए दुनिया हमारे साथ चले, ठीक है, हम बदलते हैं रुख हवाओं का, आए दुनिया हमारे साथ चले। ठीक है, ये वो झूठे खुदा हैं जो कि अपने आप को सच्चा खुदा समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचें ना, जरा जरा सा तस्वुर करें कि नबी अलैहिस्सलाम का कितना हौसला होगा, नबी अलैहिस्सलाम का कितना हौसला होगा कि वो हर इंसान से टकरा रहे थे जो अपने आप को खुदा समझता था। ठीक है, और फिर उसकी जो रिस्पॉन्स आता था, उसकी जो रिएक्शन आती थी, उसको बर्दाश्त करना होता था। नबी अलैहिस्सलाम को लड़ाई करने की इजाजत तो 2 हिजरी में जाकर के मिली है, राइट, ग़ज़वा बदर में लड़ाई करने की इजाजत मिली है इतना अरसे के बाद, 15 साल गुजर जाने के बाद। ठीक है, बगैर लड़ाई किए हुए बस बर्दाश्त, बस बर्दाश्त करना और पंगा लेते रहना, पंगा लेते रहना, पंगा लेते रहना। किससे पंगा लेते रहना? झूठा खुदाओं से। ठीक है ना, अबू जहल के अंदर इतना बड़ा झूठा खुदा, अबू लहब के अंदर इतना बड़ा झूठा खुदा, वलीद के अंदर इतना बड़ा झूठा खुदा, और जितने इस किस्म की शख्सियात थी वहां पर, सबके अंदर खुदा, सबके अंदर खुदा, और उन खुदाओं से छेड़छाड़ करते रहना। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। ठीक है ना, और जो वाकई नबी अलैहिस्सलाम के काम को लेकर के आगे चल रहे होते हैं ना, सिर्फ दरस और तदरीस वाला काम ये नहीं होता कि लोग अपनी मर्जी से आके दरस में बैठ जाएं, आप उनको जो है वो दरस सुना दें, नहीं ये नहीं होता। नफ्स से पंगा लेने वाला काम ये नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि आप जिसको भी बुरा भला कहें, हर बंदा ये समझता है तो किसी और को कह रहे हैं, मुझे को थोड़ी कह रहे हैं, ठीक है ना। दरसो तदरीस का क्या होता है, दुरूस बयानात, उसमें तो आगे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ना, चाहे पर्दे में बैठे हुए हों चाहे सामने बैठे हुए हों, तो उसमें तो आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं, आप तो एक जनरल बात कर रहे होते हैं, तो हर बंदा यही कहता है अभी ये जो डांट रहे हैं ना, ये तो किसी और को डांट रहे हैं, मुझे को थोड़ी डांट रहे। लेकिन जब वन टू वन जब बात होती है, उसमें किसी की गलती को पिक करके उनको बताना होता है कि नहीं आप ये गलत कर रही हैं, आप ऐसे नहीं ऐसे करें, ये होता है खुदा को ललकार, झूठे खुदा को ललकारना, नफ्स को ललकारना, ठीक है। तो ये जो भी इस किस्म का काम कर रहा होता है ना, तो बस अल्लाह ताला उसको हौसला देता है, तब तो वो ये काम कर सकता है, वरना नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे जो फरमा रहे हैं कि मेरे नबी आप इनको कह दीजिए कि अगर सजा देने का इख्तियार मेरे पास होता तो मेरा भी हौसला इतना नहीं है जितना अल्लाह का हौसला है, तुम्हारे ऊपर सजा मैं डाल देता, मैं सजा ले आता था। हमारे हजरत ने एक किताब लिखी, बड़ी जबरदस्त प्यारी सी पतली सी किताब है, ऐसी बेहतरीन किताब है वो, और ऐसी बेहतरीन उसमें बात लिखी है, उस किताब का उन्वान ही काफी है, ठीक है, उस किताब का उन्वान है कितने बड़े हैं हौसले परवरदिगार, कितने बड़े हैं हौसले परवरदिगार के, ठीक है, के परवरदिगार यानी कैसे बर्दाश्त करता है हम लोगों को, कैसे परवरदिगार जो है वो अपने अजाब को रोके रखता है हमारे ऊपर, जबकि हम परवरदिगार को यानी कैसे हम जो है ना वो प्रोवोक करते रहते हैं, कैसे छेड़ते रहते हैं कि बस हम जो है ना वो किसी तरह बस अजाब आ जाता है, ठीक है, हर काम उलट करते हैं, हर काम अल्लाह के खिलाफ करते हैं, अपने अल्लाह की मर्जी के बजाय अपने नफ्स, वही झूठे खुदा की परस्तिश करते करते सारी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो जिंदगी में हमारे ऊपर अजाब नहीं लेकर, और जो बजाय छोटे मोटे से जो अजाब आ भी रहे होते हैं ना, वो भी हमारी इसलाह के लिए आ रहे होते हैं, वो भी हमें जो है ना जगाने के लिए आ रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला से बड़ा तो किसी को हौसला नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये फरमा रहे हैं कि अगर मेरे पास होता ना तो फिर तो तुम्हारे पास अब आ चुका होता, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो जालिमों के बारे में ज्यादा इल्म रखते हैं, ठीक है, मुझसे भी ज्यादा इल्म अल्लाह ताला के पास है। तो हम अल्लाह ताला को ना अपना परवरदिगार जो है, जो हमारे साथ इतना बर्दाश्त का मुआमला कर रहा है, जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है, ठीक है, हम अल्लाह ताला को अल्लाह ताला का मकाम दें, ठीक है, हम ना तो अपने नफ्स को अल्लाह का मकाम देने की कोशिश करें, और ना हम अपने नफ्स के कहने के ऊपर जो है ना वो किसी और को अल्लाह का मकाम देने की कोशिश करना शुरू हो, ठीक है, अल्लाह का मकाम सिर्फ अल्लाह का मकाम, किसी मखलूक के पास ये नहीं है कि हम उसको उठा करके अल्लाह के मकाम पर रखने की कोशिश करना शुरू हो जाए, या अल्लाह को मखलूक से रिप्लेस कर दे, ठीक है, कि मखलूक हमारे काम बना देगी, मखलूक जो है ना वो हमारे मसले हल कर देगी, और मखलूक जो है वो हमारी बात को सुन लेगी, और मखलूक जो है वो हमारी बात का जो है वो जवाब दे देगी, नहीं, ये काम अल्लाह ताला कर सकते हैं और कोई ये काम नहीं कर सकता। जब हम मखलूक को अल्लाह ताला के मुकाम पे रखने की कोशिश करते हैं ना, नाकाम कोशिश करते हैं, तो उससे जो है ना वो क्या होता है कि इससे फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो हमसे नाराज होता है, ठीक है, क्योंकि मखलूक को अल्लाह के मकाम पर रखना इसी को शिर्क है, इसी को शिर्क है, ठीक है भाई, आपने अल्लाह के मकाम, ये ऐसे ही है कि जैसे किसी की कोई बैठने की जगह थी, आपने जो है ना वो किसी और को भी घुसा घुसा करके उस जगह पे बिठाना शुरू कर दिया, ठीक है ना भाई, ये जगह जो थी, ये तख्त जो था, ये सिर्फ उस ही का था, बादशाह का तख्त था, ठीक है ना, बादशाह सलामत जो है वो अपने तख्त पे बैठे हुए, किसी और को उस तख्त पे बैठने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप जो है ना वो किसी चपरासी को, किसी भंगन को, या किसी कीड़े मकोड़े को, किसी किसी गंदे से जानवर को उठा करके उस तख्त के ऊपर बिठाने की कोशिश शुरू कर दें। ठीक है, तो भाई वो तख्त तो बादशाह का तख्त है। आप गंदे से किसी सड़े हुए जानवर को या किसी इस किस्म की किसी चीज को उठा के उस तख्त पे जो बिठा रहे हैं ना, तो आप शरीक कर रहे हैं ना उसको, उस तख्त के, यानी तख्त को आप जो है वो शरीक कर रहे हैं उस जानवर के साथ, उस गंदे से इंसान के साथ। ठीक है, तो इसी को तो शिर्क कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो होते हैं ना, फिर वो शिर्क, क्योंकि शिरकत बर्दाश्त नहीं कर, शिरकत बर्दाश्त नहीं कर। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, फिर वहां से चले जा। ठीक है, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने तख्त से नहीं चले जाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत का तख्त जो है वो अर्श पर है। तो अल्लाह ताला अपना अर्श छोड़ के कहीं नहीं चले जाते, बल्कि क्या होता है कि ये जो मकाम जिसमें हम घुसेड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं ना दूसरों को, ये अल्लाह ताला का असली अर्श नहीं होता। हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते कि किसी को उठा करके जो है वो अल्लाह के तख्त पे बिठा दें। हम तो वहां नहीं पहुंच सकते। हम कहाँ बिठाते हैं, हम कहाँ बिठाते हैं, हम अपने दिल में बिठाते हैं। देखिए हमारा दिल जो है ना, ये भी अल्लाह ताला का तख्त है, ये एक वर्चुअल सा तख्त है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत रहता है। ठीक है ना, अब अल्लाह ताला की क्या डिमांड है कि हमारे दिल में सिर्फ अल्लाह रहे और कोई ना रहे। ठीक है, हमारे दिल में सिर्फ अल्लाह रहे और कोई ना रहे, लेकिन जब हम अपने दिल में किसी दूसरी चीज को घुसाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, जल्दी से बता दें, फिर हम आपकी जान छोड़ देंगे, आज क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, जब हम अपने दिल में जो अल्लाह का तख्त है उसमें जब हम किसी भी दूसरी चीज को घुसेड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर क्या होता है जी। पिटाई होती है? नहीं, पिटाई तो बिल्कुल आखिर में जाके होती है। सबसे पहले क्या होता है, जिसके नतीजे में बाद में जाके पिटाई होती है, अभी शुरू में पिटाई नहीं होती, बल्कि पिटाई की शुरुआत हो जाती है। लेकिन क्या होता है, अल्लाह ताला का अर्श जो हमने बात समझाई थी, अल्लाह की मोहब्बत वहां नहीं दाखिल होती। एग्जैक्टली, ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। डायरेक्ट मैसेज के अंदर आपकी अम्मी ने जवाब दिया या आपने माशाल्लाह बच्ची ने खुद जवाब दिया कि अल्लाह ताला उस दिल से चले जाते, अल्लाह ताला उस दिल को छोड़ के चले जाते। ठीक है, अल्लाह ताला अपने असल अर्श को तो छोड़ के कहीं नहीं जाते। हम अल्लाह ताला के अर्श पे किसी को बिठा भी नहीं सकते जो असल अर्श है, लेकिन ये जो एक छोटा सा अर्श अल्लाह ताला का, छोटा सा जो तख्त अल्लाह ताला का हमारे अपने अंदर मौजूद है ना, ये अल्लाह ताला ने हमारे इख्तियार में दिया है। हम अपनी अकल से फैसला करते हैं कि इस छोटे से अर्श के अंदर किसको बिठाना है, क्या खाली अल्लाह को बिठाना है या अल्लाह के साथ हमने किसी और को भी घुसाने की कोशिश करनी है। अगर हम किसी और को घुसाने की कोशिश करते हैं अपने दिल के तख्त के अंदर, तो अल्लाह ताला उसको छोड़ के चले जाते हैं और हमें उसी के हवाले कर देते, जिसको तुम अपने दिल में घुसाना चाह रहे हो ना, अल्लाह ताला हमें उसके हवाले कर देते हैं। अब तुम जानो और तुम्हारा ये झूठा खुदा जाने, मैं इधर से जा रहा हूं। ठीक है, मैं इधर से जा रहा हूं। ठीक है, तो अल्लाह ताला फिजिकली नहीं जाते, बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत वहां से चली जाती है, अल्लाह ताला की अजमत वहां से चली जाती है। ठीक है, अब जो है ना वो क्या करना होता है, अब इसको अगर वापस लाना है ना, तो बस एक ही रास्ता है, तौबा करना, माफी मांगना। ठीक है, अगर तौबा नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे ना अपनी इस हरकत से कि जो हमने दिल के अंदर दूसरे को घुसाने की कोशिश करी थी, जब तक तौबा नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीज निकलेगी नहीं, जब तक ये चीज निकलेगी नहीं हमारे दिल से, तो उस वक्त तक अल्लाह ताला वापस नहीं आएगी हमारे दिल। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसे अंजाम से महफूज फरमाए कि हम अपने दिल के अंदर अल्लाह को छोड़ के किसी और चीज को घुसाना शुरू करें, और अल्लाह ताला हमारे दिल से अपनी मोहब्बत को निकाल करके दे जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमा दें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।